नोटिस पर 5489 तक का चल रहा है। ओम शांति। बाप ने समझाया है, ये है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। सुबह मानो शक्ति गुरु की सवेरे में अमीर और कल गुरु की अंधेरे में गरीब। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। तो ये दिल में धारण करना है, बरोबर भक्ति फकीर बना दे, ज्ञान अमीर बना दे। भक्ति मन है, भक्ति किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं अंधश्रद्धा को। श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन बुद्धियुक्त श्रद्धा विश्वास तो बरोबर भक्ति फकीर बनाती है। दिन और रात भी बेहद कर, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। क्या बेहद की बात है? फकीर और अमीर अभी की बात क्या होती है? फकीर और अमीर की वो समझते हैं धन संपत्ति से लायक है, रहते है तो फकीर है, और खूब धन संपत्ति है तो अमीर है। वो स्कूल धन के लिए समझ लेते हैं, लेकिन बेहद की बात कहाँ के लिए? यह है संगम की दुनिया के लिए। संगम की दुनिया में शूटिंग पीरियड में सबको प्रधान स्टेज में है अमीर, ज्ञान धन से भरपूर, और तमो प्रधान शूटिंग में गरीब। तो ये बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए ये बैटरी पावन बनाने ऐसे ऐसे सोच के याद रखो तो खुशी मिलो। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते। बैटरी में भी क्या विशेषता होती है? पहले भरी हुई होती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है। तो पतित आत्माओं के लिए एक बैटरी क्यों बताई? बैटरी तो डिस्चार्ज होती रहती है। बड़ी बैटरी भी सही, बड़ी हो या छोटी हो, बैटरी तो डिस्चार्ज जरूर होगी। बैटरी हाँ बैटरी है कौन, और जनरेटर है कौन? हाँ जो बाबा है जनरेटर, शक्ति दाता, और फर्स्ट बैटरी है प्रजापिता। तो सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी पावन बनानी। तो ऐसे ऐसे सोच के याद रखो तो खुशी मिलो। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। کیسے بنتے ہو یہ بھی بات سمجھاتے ہیں. ویسے ہی کہتے دکھتا جو کنیکشن کیا جائے گا دوسروں سے تو ویسے ہی ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو کلیگ میں تو جنریٹر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور سچیو کے آگے کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے. تو بتایا امیر بننے کی اس کی بات کو بتلا دی کیا یوکتی ہوئی تھی. ایک پہ کنیکشن جڑا رہے من منا بھو متیاگی بھو یہی دو یوکتیاں ہیں. بیٹری کو ڈسچارج نہ ہونے دینے کی کیا ایسے نہیں کوئی بھائی بہنوں کے سمبندھ میں نہیں جانا ہے ملنا جلنا نہیں ہے یا بات چیت ہی نہیں کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بدھی کی ساتھ ایک سے جڑی ہے تو من منا بھو من میرے میں لگا رہے من کے سنکلپ میرے میں سمائے ہوئے رہے اور جس کے من کے سنکلپ ایک باپ کے سنکلپ سے سمائے جائیں گے تو درد کیا ہوگا مرد یاجی بھو کیا ہوتا ہے مرد یاجی بھو یاجی مرنا ہردے میں کرنا آہوتی دینا مت یاجی بھو میرے میں میرے لیے آہوتی دو ارتھات جو بھی کرم کرو میرے لیے کرو. کیونکہ من جہاں لگا ہوگا وہاں تن اور دھن تو سٹ ہی جائے گا. جہاں من نہیں ہوگا وہاں نہ تن کوئی ارپن کرے گا نہ کوئی دھن ارپن کرے گا. ٹائم بھی نہیں لگائے گا سمے اور سمپرک کی شکتیاں بھی وہاں ارپن نہیں کرے گا. تو یہ دو یوکتیاں ہیں یہ بھی بچے جانتے ہیں یہ پرشوتم سنگم یوگ ہے. تم جو بھی یہاں بیٹھے ہو گارنٹی ہے تم سر کے امیر ضرور بنے گے. کنہیں کے لیے گارنٹی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں ماؤنٹ آبو میں جو بھی بیٹھے ہیں تو ان کے لیے گارنٹی ہے. تو امیر اور غریب اس کا آدھار کیا ہوا امیر بننے کا آدھار کیا ہوا ایک بات کے کنیکشن اور غریب بننے کا آدھار کیا ہوا انیکوں کے کنیکشن. لیکن یہاں تو نرالی بات ہے یہاں نہ لوکس سے توڑنا ہے لوکس سے بھی لوکس سمبندیوں سے بھی توڑ نبھانی ہے اور الوکس سے بھی توڑ نبھانی ہے. کنیکشن سب کسی سے نہیں کرنا نہیں تو ان کا کلیان نہیں ہو سکتا. تو یہاں کیا کرنا ہے یہاں بدھ ہو گئے ایک بات سے جھکا رہے اور نبھانا سب کے ساتھ تو سب کے ساتھ نبھانا. لیکن بدھی کا پاؤں ایک طرف نمبر وار پرشاسن وار ہے اسکول میں بھی ایسے ہوتا ہے نمبر وار کلاس ٹرانسفر ہوتا ہے امتحان پورا ہوتا ہے تو نمبر وار جا کر کے بیٹھتے ہیں. یہاں کون سا کلاس ٹرانسفر ہوگا اور کہاں جا کر کے بیٹھنا وہ تو ہے حق کی بات. وہ تو پڑھائی تھی پرائمری سیکشن سے پاس ہوتے ہیں تو جا کر کے مڈل اسکول میں ہائی اسکول میں بیٹھتے ہیں. یہاں پھر کون سی بات ہے, کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں پاس کرتے ہیں؟ یہاں پرائمری کورس پاس کرتے ہیں. کون سا کورس؟ بس جان دو جنم کہے جاتے ہیں نام ہوگی. تو جو فرسٹ نالج کے لیے بیسک نالج, تو وہ بیسک نالج ہے سادھارنیا. آتما کیا ہے؟ بندو. پرماتما کیا ہے؟ بندو. وشیش نالج نہیں, کیونکہ بندو بندو تو سب آتما ایک جیسی, پانچ کروڑ آتما ہے بندو. تو وشیش نالج اس میں کیا ہوئی؟ وشیش نالج ہے ہو ایم آئی, میں بندو آتما کون سا وشیش پارٹ بجانے والی. اور وہ وشیش پارٹ بجانے والا سوچیں تو جوتی بندو کون سے سوروپ کے دوارا وہ وشیش پارٹ بجاتا ہے جو نرک کو سورگ بنائی دیتا ہے. ایسا پارٹ ہے جو نئی دنیا بناتا ہے, کیونکہ پریکٹیکل میں ہوگا تو ساری دنیا مانے گی, پریکٹیکل نہیں ہوگا تو کوئی نہیں مانے گا. تو یہ وشیش نالج ہے, یہ گرہ ایڈوانس نالج. تو اونچی پڑھائی ہو گئی تو کہاں سے کہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ بیسک نالج سے ایڈوانس نالج میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, کلاس ٹرانسفر ہوتا ہے. امتحان پورا ہوتا ہے تو پھر نمبر بار جا کر کے بیٹھتے ہیں. وہ ہے حد کی بات, یہ ہے بے حد کی بات. نمبر بار جمالا میں جاتے ہیں, کوئی پہلے پہنچتے ہیں, کوئی بعد میں پہنچتے ہیں. مالا اتوا جھاڑ تو جھاڑا کا ہی ہے, پرماتما تیرے منسی سکتی کا بیج ہے. یہ بچے جانتے ہیں کہ جھاڑ کسی کو کیسے پاتا ہے, پرانا کیسے ہوتا ہے. آج یہ تو مجھے جانتے, باپ نے آ کر کے سمجھا ہے. ابھی یہ ہے پرسوتم سنگم یوگ, ابھی تم بچوں کو پرساد کرنا ہے, دیوی گن کی دھارنا کرنے ہیں. اس طرح کتھا دیے دوسرے کے پنکھ نکال اپنے میں ڈال. پنکھ ہیں دیوی گنوں کے, تو اپنے اوپر دھیان دینا ہے. یاد کی یاترا سے ہی تم پاون بنے گے اور کوئی اپائے نہیں. باپ جو سب تک کلان بیٹھ رہی ہے ان سے پورا یوگ لگانا ہے. ان کی بیٹری کبھی ڈھیلی نہیں ہوتی ہے, وہ ستو رجو تمہ میں نہیں آتی ہے, کیونکہ ان کی شرما کی سوستھا ہے. سنی گئی؟ کرما کی سمانا کرم کے آکرشن سے پہلے رہنے کی اوستھا. تم بچے کرم بندھن میں آتے ہو, جو کرم کرتے ہو اس کے بندھن میں بندھائے مان ہو جاتے ہیں. میں بندھائے مان نہیں ہوتا ہوں. کتنے کڑے بندھن, جو بھی کرم کرتے ہو تو راو راج ہونے کے کارن بندھائے مان ہو جاتے ہیں. کتنے کڑے بندھن ہیں اب باپ کہتے ہیں سوائے آدھی کی یاترا اور جان کے, کوئی اپائے نہیں ہے ان بندھنوں سے کھینچنے کا. جان بھی ہڈیاں نرم کرتا ہے, منہ تو بھکتی بھی نرم بناتی ہے. کہیں گے یہ بےچارا بھکت آدمی, ان میں ٹھگی آدمی کچھ بھی نہیں ہے. پنت بھکتوں میں تو ٹھگی ہوتی ہے. بابا اس بات کا بڑا انوبھوی, آتما شریر دوارا دھندا دھوری کرتی ہے, तो इसे जन्म तारीख सब कुछ स्मृति में आता है। चार पांच वर्ष की बात अथवा जीवन कहानी याद रहनी चाहिए, कोई दस बीस वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, वो तो याद रखते हैं, दूसरे जन्म के लिए वो पता नहीं रह सकता। अरे आत्मा भिन्न नाम रूप देख काल में पाठ बजा, नाम रूप सब बदलता है। ये तो बुद्धि में है कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरा ले दिए। जरूर चौरासी जन्म चौरासी नाम चौरासी बात बने होंगे। अंत में फिर समोपधान संबंध हो जाता है। चौरासी वाला बात कैसा मिलेगा, समोपधान संबंध वाला। इस समय जितना संबंध होता है उतना कभी नहीं होता है। किस समय है? क्यों क्योंकि संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें शूटिंग सीजन में त्रेसठ नहीं चौरासी जन्मों की आवृत्ति होती है। तो सबसे जाति संबंध कहाँ बनते हैं? संगम युग क्यों बनते हैं? और जन्मों में तो संबंध जुड़े बंधन में आए, और इस एक जन्म में क्या करना है? संबंधों को तोड़ना है या जोड़ना है? अनेक प्रकार के त्रेसठ जन्मों के संबंध अपना हिसाब किताब को लेने के लिए आएंगे। कोई वाइब्रेशन से हिसाब किताब लेंगे, कोई दृष्टि से हिसाब किताब लेंगे, कोई वाचा से भी हिसाब किताब लेंगे, कोई कर्म इंद्रियों से भी हिसाब किताब ले सकते हैं। लेकिन वो हिसाब किताब लेने आए और हम क्या करें है? हम उनसे हिसाब किताब चुप चुप करके फ्री हो जाएं, ऐसा न हो कि हम नया कर्म बंधन बांध लें। तो इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते, क्योंकि अब भी अगर हम इस जन्म में भी बनते रहे तो फिर हमारा माला का नंबर पिछड़ जाते, क्योंकि मूल पुरुषार्थ है क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। किससे नष्टो मोहा? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह। कल की संबंध के बहुत होते, इनको बंधन ही समझना चाहिए। द्वापर युग में इतना बंधन नहीं बंधता जितना कलयुग में आकर के बंधता है। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, इस समय सबसे जाति बंधन है। चाचे मामे चाचे कितने जाति होते जाते, जितने जाति संबंध उतने जाति बंधन। अखबार में पढ़ा पांच बच्चे इकट्ठी जन्म है, एक साथ कितने बच्चों से संबंध जुट पड़ा? पांच बच्चों से संबंध जुट पड़ा। और याद है यहाँ से क्या निराली बात है? एक बात से तो है, लेकिन यहाँ बहुत संबंध जो है वो भी तो सामने आते हैं। ब्राह्मण परिवार सिर्फ ब्राह्मण परिवार नहीं, और भी नए नए जो बच्चे ब्राह्मण बच्चे बनते हैं तो उनका भी तो सोने की जंजीरें है ना, तो वो भी हमारे सामने सूची सीजन में आती तो है ना। तो अगर उसमें वो लग गया तो वो भी तो संबंध जुट गए ना। जैसे कलयुग की दुनिया में पांच पांच बच्चे इकट्ठे जन्म हुए तो माँ का वो एक संपात से दुष्पड़ा, तो शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग भी यही संबंध होती तो अखबार में पढ़ा था पांच बच्चे इकट्ठे घर में पांच और तंदुरुस्त हिसाब करो इतने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध है सबसे छोटा है। ऊपर क्या बताया है? हाँ, यहाँ हमारा संबंध है सबसे छोटा क्योंकि एक बात से है तो सबसे छोटा। लेकिन तेसर जन्मों की आवृत्ति होती है यहाँ और वो संबंध हिसाब किताब लेने आते हैं। याद रहता नहीं कि हमें चुप्पू करने का समय चल रहा है तो छोटा होने की बजाय क्या हो जाता है? इस समय जितने संबंध होते हैं उतने फिर कभी नहीं। तुम्हारा अभी सबसे छोटा संबंध है फिर एक बात से सर्व संबंध है। सारे ही संबंध सब प्रकार एक बात दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है। किस बात का बुद्धि योग? अनेक प्रकार के संबंधों के बुद्धि योग हमारा और किसी से नहीं है। नाना चाचा मामा ताता ताऊ साजन सजनी दूसरों से हमारा कोई संबंध नहीं। ये सारे संबंध किससे हैं? एक बात सत्युग में फिर इससे जाती है किससे संबंध हुए? यहाँ तो एक ही बात से संबंध है और सत्युग में क्या होता है? भाई बहन मात पिता हो जाती धीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है आइए इस बात को बच्चों को एडप्ट करते हैं। एडप्ट करने वाला कौन है? आइए आइए मन जिनसे ऊंचे से ऊंचा कोई होता नहीं जी से जी गोद में जाना इसलिए वर्षा पानी के ये तो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। काहे का वर्षा है? स्वर्ग का वर्षा, सुख शांति का वर्षा। तो ऐसे बाप की गोद में आए हो कैसे बाप की गोद में जिससे हमको सुख शांति का वर्षा मिलना है। तुम ब्राह्मण से उच्च कोई है नहीं। दूसरा देश सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं है। भाई बहन का संबंध भी गिराई देता है। ऐसा क्यों कहा है? भाई बहन का संबंध गिराया देता है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि दुनिया है कलयुगी तमोप्रधान। तमोप्रधान कलयुगी दुनिया में ऐसे तो द्वापर युग चाहिए। इस्लाम धर्म में भाई बहन की शादी होती चली गई तो फाउंडेशन तो वहीं पड़ गया। दृष्टि खराब होने और अब तो कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। हम है संगम में घड़ी घड़ी शक्ति जी के में जाते हैं जाने का पुरुषार्थ करते हैं और घड़ी घड़ी कांधे पड़ते हैं। कलयुग की तमो प्रधान दुनिया के बाद आ जाते हैं। इसका मतलब भाई बहन के संबंध में भी गड़बड़ हो सकता है। बाबा ने बताया कि आज की दुनिया में तो भाई बहनों को नहीं छोड़ता धंधा बनाए देता, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी शिष्या को नहीं छोड़ता। तो भाई बहन का संबंध भी गिराया देता है। संबंध एक ही होना चाहिए, ये है नई बात। हर चौकन की बात जान, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आ रहे। सतयुगी रौनक और सतयुगी रौनक में रात दिन का फर्क। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण राय जी, पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते। बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो चार पांच ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है, कोई समझते हम तो नरक में हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो इनको, जो अपने को समझते हैं कि हम नरक में, उनको समझाना है। बाकी तो कहते हैं हम तो स्वर्ग में हूँ। तो ये नारी के स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए है, उनको नहीं समझाना। उनको फिर बताना है स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं, तो बड़े बड़े महारथियों मन ब्राह्मण क्या प्राप्ति हुई, क्या वर्षा मिला, तो क्या कहेंगे हमको स्वर्ग की बात कही, कौन सा जन्म चल रहा है। एक ही जन्मों में से पहला जन्म हमारा थी मधुवन स्वर्ग आश्रम, चलो तुमको घुमा ला दिखाए ला। तो फिर उनको समझाने की दरकार दरकार नहीं है। जो समझते हैं कि हम नरक में हैं, दुखी हैं, तो उनको बताना है कि तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम विरोध करते हो, परंतु अशांति में ही नोट रह जाते हैं, बुद्धि में नोट नहीं होते, समय पर याद नहीं आते हैं। अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा तो थे भी नहीं है, समय पर याद क्यों नहीं आते, क्योंकि बुद्धि करती है, बुद्धि पति तो विकार ही है, तो विकार में जाने वाली बुद्धि वो तो खेद हो गया, तो उसमें ज्ञान दल डालने से फायदा नहीं होता, एक तरफ डालते जाते दूसरी तरफ निकलता जाता, तो समय पर याद नहीं आता। तो अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, वो कहते हैं माम एक याद करो, क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, परम पिता परमात्मा जब बिंदु, बिंदी कैसे कहेगी, जरूर किसी तन के द्वारा मुख से कहते हैं, क्या कहते हैं माम एक याद करो, मुझे एक बिंदी को याद करो, दूसरी बिंदियों को याद मत करना। तो अब ये कैसे पता चले कि मुझे एक बिंदी कौन सी बिंदी को याद करें, जिससे मुखर के द्वारा कहा उसी स्वरूप को साकार रूप में समझ करके कि उसमें वो निराकार ज्योति बिंदु कार्य कर रहा है, उस प्रवृत्ति में विश्वास रखते हुए उनको याद करना। कौन सी प्रवृत्ति, आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति, हमारा ही प्रवृत्ति है। अगर सिर्फ बिंदु को याद किया तो क्या होगा, निवृत्ति मार के हो जाएंगे, जैसे इब्राहिम बुद्ध चाहे तो क्या करते हैं, वो बिंदु को याद करते हैं, इसलिए वो निवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं, निवृत्ति मार्ग के गुरु बन जाते हैं, वो पृष्ठ मार्ग के दिल देवता सनातन धर्म में नहीं आ पाते। तो यहाँ भी ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो प्रवृत्ति की याद नहीं करती, वो सिर्फ बिंदु को याद करते हैं और दूसरों को भी क्या सिखाते हैं, बिंदु को याद। तो पाप कहते हैं ना लेकर याद करो तो पाप कर जाएंगे, याद में कोई तो आमदनी होगी ना, याद की रकम अब निकलती है, अब उन्होंने सब भक्ति मार्ग में जो रस्म रिवाज चलते हैं उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, अभी संगम हो। जैसे द्वापर के आदमी एक निराकार की अर्ध विचारी याद होती थी तो उसकी भी रस्म कहाँ पड़ी, संगम हो, क्योंकि द्वापर में पड़ता तो पता नहीं चल सकता। याद से ही तुम कितने ऊंचे सत्य पवित्र बनते हो, जितना जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। उच्च पद किस आधार पर, जितना जो याद करेगा, तभी तो कहते हैं जितनी जो सर्विस करेगा तो उच्च पद पाएगा। ये तो दो बात हो गई, याद की सर्विस है। हाँ,
याद करने से बीज को पावर मिलती है और बीज को पावर मिलेगी तो सारे वृक्ष की सेवा हो जाएगी। बीज अगर मुट्ठी में है तो सारा वृक्ष, सारे पत्ते जैसे मुट्ठी में आ जाते हैं। तो जितना जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा, बाबा से पूछ भी सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े, यहां जो जायदाद है और जो संबंध है उसमें कोई झगड़ा झगड़ा करता नहीं है। हाँ, यहां तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, बाप है देहद का मालिक, बाप तो बड़ी सहज।
ग्यारह नंबर के रजिस्टर में दसवां पेज 5489 की मुरली का दूसरा पेज मध्य आदि। तो बाप है देहद का मालिक, बेहद का मालिक कैसे, 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं वो सब उस मालिक को मानने वाली होंगी, ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उस बाप के प्रति माथा न झुकाए। आगे पीछे की बात है, कोई पहले झुकाएंगे कोई बाद में झुकाएंगे। तो बाप है बेहद का मालिक, बात बड़ी सहज है, उस तरफ है स्वर्ग और उस किस तरफ है नरक, नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे, जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे, कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी, इन बातों में हमारा कुछ भी नहीं जाता, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्योंकि वो बाप को नहीं जानते कि बाप ही स्वर्ग और नरक का है, ध्वंस करने वाला और स्वर्ग का कहता है। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं, तो उनके लिए फिर स्वर्ग नरक की बात समझ में नहीं आ सकती। तो वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि उस वंडर में ही लगी रही। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है, रात दिन का फर्क है, शास्त्रों में लिख दिया है। काली देह में गया कौन, कृष्ण। उसको सर्प ने डसा तो काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो, क्या समझाओगे इसमें? शास्त्र में बातें कहां की यादगार लिखी हुई है? तो सर्वसंगम युक्त यादगार। तो काली तरह कौन सी हुई है? काली, महाकाली और दहमन, लंका दहन, लंका जलाई जाती है तो उसका नाम रख दिया लंका दहन। तो काली दह माने जलाने वाली, जैसे अग्नि होती है तो अग्नि क्या करती है? जलाई देती है। तो ऐसे ही दो प्रकार की अग्नि, एक योग अग्नि यानी लगन की अग्नि और दूसरी है काम अग्नि। तो काली दह में कौन सी अग्नि थी? काम अग्नि। काम अग्नि विस्फोटक रूप सब पकड़ती है, सत्युग त्रेता में या द्वापर कलयुग में? क्यों द्वापर कलयुग में ऐसी क्या बात होती है जो वहां काम अग्नि विकराल रूप धारण कर लेती? देहमन देह तो कुछ न कुछ होती है, देवताओं को भी आंख से बच्चे, आंख के आकर्षण से, मुख के आकर्षण से बच्चे पैदा होते हैं तो देह तो हुई ना, बिना देह के बच्चे कैसे आ जाएंगे? विकास विकृति क्यों नहीं, विकृति नहीं हुई तो दो कलें कम कैसे हो गए? देवता के अंत में आठ कलें कम कैसे हो गए? उतनी इतनी तो मतलब क्या हुआ कि वहां विविचार विविचार नहीं होता और द्वापर कलयुग में विविचार होता है। तो विविचारी वृत्ति जब बनती है तब से वो काम आदमी विकराल रूप धारण कर लेती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अनेक प्रकार की आशाएं आकांक्षाएं जो पूरी ही नहीं होने वाली है वो उठ खड़ी होती है, क्योंकि संबंध भी अनेक प्रकार के बढ़ते जाते हैं। तो जितनी आकांक्षाएं बढ़ेंगी उतने संबंध भी बढ़ते जाएंगे, उतने बंधन भी बंधते जाएंगे, क्योंकि आत्मा हर जन्म में कोई पुरुष ही थोड़े ही बनेगी जो बंधन में दूसरों को बांधती रहे, स्त्री चोला भी धारण करेगी तो उसमें बंधन में आने के भी संस्कार आ जाएंगे। तो काली दह कैसी दह? गोरी नहीं, काली दह, यानी जो आत्मा अनेकों से संबंध जुटाती है 63 जन्मों में तो कैसी हो जाती? काली दुक्कट। उसका संग करने मात्र से ही जो भी संग करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? काम आदमी में जलता रहेगा। तो कृष्ण ने क्या किया? काली दह में गया और जो जाते थे वो तो सब खलास हो जाते थे। और कृष्ण ने क्या किया? विषय वैतरणी नदी को क्रॉस किया, काली दह में गया, सर्प ने डस लिया क्योंकि उसमें तो था ही कालिया नाम पांच फण वाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों फलों से भरपूर, पांच विकार रूपी सर्प। तो जो जाएगा उसमें उसको तो वो जरूर डसेगा, मेरे ठिकाने पर तू कैसे आ गया? तो सर्प ने डसा तो काला हो गया। कौन? कृष्ण काला। अब सत्युग में कृष्ण काला होगा क्या? फिर कहाँ की बात हुई? जरूर संगम युग में कृष्ण की सोल मानव ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद जिस किसी भी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है वो ब्राह्मण बच्चा ही किसी ऐसी मनुष्य आत्मा के संबंध में आता है, क्लोज कंटेक्ट में आता है, जो आत्मा जो मनुष्य आत्मा अनेक जन्मों में अनेक आत्माओं के साथ संबंध में रही है, स्त्री पुरुष के संबंध से ही ज्यादा पतन होता है, काम विकार से पतन होता है, पतित बनते हैं, ये नहीं कहा क्रोध विकार से पतित बनते हैं। तो काली दह में कूद गया, सर्प ने डस लिया और काला हो गया। तो अब तुम इन बातों को अच्छी तरह समझते हो कि काला हो गया तो क्यों हो गया और वो क्यों कूद गया है? दुनिया में और भी तो कूदते हैं, अरे वो ही कर्म एक ने किया, वो ही कर्म दूसरे ने किया, तो पाप तो एक जैसा बनना चाहिए, कर्म बंधन तो एक जैसा बनना चाहिए, फिर उसका इतना गायन क्यों काले पने का कि काले कृष्ण का चित्र बनाते उसको पूजते रहते, राम का काला चित्र बनाते उसको पूजते रहते, और मनुष्य काले हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं तो उनकी पूजा नहीं करते। तो ये अंतर क्या हुआ कर्मों में? अहम आप जब से देखी जाती है, याद में रहकर जो कर्म किया जाता है उसका बंधन नहीं बनता। पहली बात, मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिसके ऊपर कोई पाप ना लगे। तो जरूर जो निमित्त बनता है विनाश के, क्योंकि विनाश तो कैसे होता है, इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अनेकों के संबंध संपर्क में संसर्ग में आने से क्या होगा, इससे सुख शांति में दुनिया का विघटन होगा, और एक ही याद में रहने से पवित्रता आएगी, स्थापना होगी। तो ब्रह्मा द्वारा क्या होता है, स्थापना, और शंकर द्वारा विनाश। तो कठिन काम कौन सा हुआ, क्यों कठिन काम विनाश का क्यों हुआ? क्योंकि अनेकों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी बुद्धि को डिटैच रखना ये सिर्फ योगी की बात है। अनेकों के संबंध संपर्क संसर्ग में आया ही नहीं, सन्यासी बनकर के रहा और फिर पवित्र रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं, ये तो सन्यासी भी होते हैं, वो भी पवित्र रहते हैं। तो सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए विशेष बात, विशेष पार्ट क्या हुआ, शंकर का। लेकिन फिर ये भी कह दिया कि तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है क्या, तो तुमको हम सबको कल्याण कर दें, क्यों? क्योंकि दूसरों का कल्याणकारी वो ही बन सकता है जो स्वयं उस स्टेज पर उस सीट पर सेट हो गया हो, नहीं तो नहीं कर सकता। तो कृष्ण के चित्र को कोई उठा करके पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए कि कृष्ण काला क्यों हो गया, 84 के चक्र में क्यों आया, कब आया, सुदर्शन चक्र कब घुमाया, 84 जन्मों की कहानी है ना, जैसे कृष्ण की है वैसे तुम्हारी है। स्वर्ग में तो तुम आए ही हो, त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे, फिर द्वापर कलयुग में नहीं आएंगे, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े को बड़ी भी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी सब नरकवासी। क्या कहा? इस जन्म के मित्र संबंधी या अनेक जन्मों के मित्र संबंधी है? इस जन्म के, इस जन्म के सिर्फ अनेक जन्मों का हिसाब किताब है ना आत्मा का, तो जो अनेक पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा वो संगम युग में डिक्लेयर सामने जरूर आएगा। तो तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी सब नरकवासी हैं और हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाहर के रहने और यहाँ सात रोज आकर के रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ की सात रोज की भट्टी का महत्व बताया। हंसों के संग से निकल बगलों के संग में आते हो, वो जाते हो। यहाँ से जब जाते हो तो हंसों के संगठन से निकल बगलों के संगठन में जाते हो, संग में जाते हो। बहुत बिगाड़ने वाले भी होते हैं दुनिया में। सब क्या है? बिगाड़ने वाले। बहुत बच्चे मुरली की परवाह भी नहीं करते, बाप समझाते हैं गफलत मत करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है, सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, क्या याद किया था? यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ है संगम में? अच्छा, वो सोचते सोच समझ के बोला करो, संगम युग में सिर्फ ब्राह्मणों का ही संग है। हाँ, सात दिन की जो भट्टी है उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का ही संग है। ये सात दिन का पीरियड बताया पकने के लिए। बाहर की दुनिया में जाते हैं तो कच्चे हो जाते हैं, तो फिर क्या करें? फिर सात दिन फिर पक्के होके रहो। कहाँ ऊंच से ऊंच और कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा बगलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे हैं? बगुले कांटे लगाते हैं, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी तुमको ऊंच मिलेगा। वो कांटे तो तुमको लगाते हैं, लेकिन कांटों की दुनिया में रह करके तुम जो पुरुषार्थ करते हो, अगर बाप की श्रीमत पर रहते हुए करते हो तो तुमको पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर के रहो, बगुले के संग में बगुला मत बन जाओ। ऐसा न हो कि तुमको भी संग का रंग लग जाए। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। कौन कौन हो जाते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती? हाँ, जो बगुलों के संग में बगुला बन जाते हैं। मधुबन की बात बताई कि है मधुबन में, और थोड़ा सा संग का रंग मधुबन में, क्योंकि मधुबन में भी माया आती है, थोड़ा सा संग का रंग लगा और बस दस्ती बस्ती वाइब्रेशन चेंज हो गई। एक के प्रति जो प्रीति रखनी थी वो परिवर्तित हो जाती, चेंज हो जाती। तो गायन है कहाँ का ये? आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, संगम युग में भी कहाँ का? हाँ, मधुबन का। कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाती। थोड़ा ज्ञान है तो स्वर्ग में आ जाएगी, परंतु फर्क तो रात दिन का पड़ जाएगा। भले बाहर की दुनिया में भागंती हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज्ञान है तो रिजल्ट क्या होगी, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन भागंती होने के कारण जो बाप की निंदा कराने के निमित्त बने तो ऊंच पद नहीं पा सकते, सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, अतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्या दान का भी तो जन्म चाहिए ना, ये राजा ही स्थापन हो रही है। कौन सी मेरी मत बताई, यहां मत कौन सी बताई है कि बाप के बने तो बाप से ही संबंध जोड़ करके रखो, दृष्टि का, वृत्ति का, वाचा का, कर्मणा का, कर्मेंद्रियों का, दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आते हुए भी बुद्धि को एकदम डिटैच। अगर ऐसा नहीं किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। चांडाल का जन्म भी तो चाहिए ना, चांडाल क्या होते हैं, ये राजा ही स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती है। ये भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, बल कोई बातें रोज सुनाई जाए तो भी जैसे तत्ता तवा ज्ञान की बूंद डालो एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल लेते हैं, क्योंकि बाप से प्रीति नहीं है। क्यों निकाल लेते हैं, प्रीति बुद्धि नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धि लोग बाल बच्चों की तरफ भाग जाते हैं। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, इसको कहा जाता है वैराग। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ न कहाँ ख्याल चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना, जो कुछ देखते हैं तो सब खत्म हो जाना, क्यों हमारे भाई बहन थोड़े खत्म हो जाएंगे हैं? इन आंखों से हम जिन भाई बहनों को देख रहे हैं एडवांस नॉलेज में हैं, वो खत्म हो जाएंगे क्या है? ज्ञान से खत्म हो जाएंगे, ज्ञान क्या एडवांस के भाई बहनों को टूट जाने के लिए है जो ज्ञान से खत्म हो जाएंगे। अब ज्ञान से खत्म हो जाए वो तो बात ठीक है, ज्ञान से कैसे खत्म हो जाएंगे हाँ, ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये फीचर्स जो देख रहे हैं वो तो तमो प्रधान फीचर्स है, ये फीचर्स सब चेंज हो जाएंगे। तुम्हारा बुद्धियोग नई दुनिया में रहे और वेद के संबंधियों से बुद्धियोग रखना है, खाद्य के संबंधियों से बुद्धियोग नहीं रखना है। ये माचुक वंडरफुल है। तो वेद का संबंधी कौन हुआ, एक माचुक बात भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो हम आपके बिगड़ किसको भी याद नहीं करेंगे। तीसरा पीस तो अब मैं आया हुआ हूं, याद दिलाए रहे बाबा, याद दिला रहे हैं, बड़ी ललक से याद दिलाए रहे हैं। हाँ, तो अब मैं आया हुआ हूं, तुमने 63 जन्म अंजाम किया कि आप जब आवेंगे तो हम बारी आवेंगे और किसी को नहीं याद करेंगे। तो अब मैं आया हुआ हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धियों को हटाना पड़े ना, 63 जन्मों के जो भी हिसाब किताब के लटकनते हैं सब से बुद्धियों हटाना पड़े क्या, कोई जबरदस्ती है क्या की दुनिया है, भक्ति भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वो साफ सत्य सत्य करते थे। अब तुम कहां सत्संग आदि में सुनेंगे तो हंसते रहेंगे कि ये कितनी झूठी बातें सुनाते हैं, सत्य तो एक बात ही सुनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। यहां कोई बाहर वाला बैठा हो, अंदर वाला बाहर वाला क्या है? अंदर वाला मानना क्या? जो बाप का बच्चा बन गया, निश्चय बुद्धि हो गया, क्योंकि बाप ने बताया, उनको समझाते जाओ और उनसे लिखाते जाओ, पूरा समझा के उनसे पूरा पक्का निश्चय पत्र लिखवा लो। है हाँ। तो मत तो सबको मिलती है। ये जैसे मुर्गों की दुनिया है, तो यहां कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। माना जो अनिश्चय बुद्धि होगा, जिसने ज्ञान सुना ही नहीं, बाप को पहचाना ही नहीं, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता नहीं जाने क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा तरफ जाती है, और यह कहते हैं वो हमारा बाप है, हैं? सब ब्राह्मणों की दुनिया क्या कहती है? सर्वव्यापी कहाँ कहती है? ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है? वो तो नहीं कहते। अब सर्वव्यापी तो नहीं कहते हैं, फिर ये भी कहाँ बताते हैं कि एक व्यापी कहाँ है? वो एक कौन है जिसमें वो व्यापक है, हैं? कहाँ है व्यापक? वो कौन से सर में व्यापी है? सर्वव्यापी न सही, चलो हमने मान लिया सर्वव्यापी, फिर ये तो बताओ कि कहाँ व्यापी है? है? तो जब यही नहीं मालूम कि एक व्यापी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर जरूर सर्वव्यापी? तो सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी, और यह कहते हैं वो हमारा बाप है। सर्वव्यापी नहीं है वो, एक व्यापी है और वो एक हमारा हमारा बाप है। कांड से वो ना ना करते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये बाप नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रही, और उनके अंदर से ना ना निकलती रही। इसलिए नहीं कोई को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि ये सार्वजनिक सभा नहीं है। इसमें जो विशेष आत्माएं हैं, पढ़ी लिखी आत्माएं, अरे यूनिवर्सिटी में जाकर के कोई सब दाखिल हो सकते हैं क्या? बेसिक नॉलेज की बात दूसरी है, आईआईटी वाले स्कूल में सब जाके पढ़ सकते हैं, और ऊंची पढ़ाई में तो जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं पढ़ी।